समय में शामिल कविता और बरबर राव। विभिन्न भारतीय भाषाओं का साहित्य आज हिंदी में अनुदित होकर मुश्किल से लाखों पाठकों तक पहुंचने का आसान रास्ता तय कर रहा है। ऐसे अनुवाद समय में वाणी प्रकाशन द्वारा हाल ही में हम क्रांतिकारी शायर मखदूम मोहिउद्दीन का सरमाया पाठकों तक पहुंचा चुके हैं। इसी क्रम में अब दक्षिण के बहुचर्चित तेलुगु के क्रांतिकारी कवि बरबर राव से पाठकों का परिचय कराने जा रहे हैं। यद्यपि बरबर राव की प्रतीक्षा हिंदी पाठकों को अनेक वर्षों से रही है, एक मुद्दत बाद उनकी कविताओं का हिंदी में प्रकाशन स्वयं में एक उपलब्धि के साथ साथ ऐतिहासिक इस अर्थ में है कि बरबर राव के बारे में, उनके जीवन कर्म के बारे में हिंदी पाठकों ने बहुत कुछ पढ़ रखा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मैनेजर पांडे, हरिहर द्विवेदी, चमन लाल, एन रघुराम, कंचन कुमार, अल्पना, प्रेम सागर, आदेश और अर्चना के अनुवाद अधिकांश पाठक विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में पढ़ चुके हैं, किंतु साहस गाथा में सम्मिलित कविताओं के जरिए बरबर को वर्तमान समय में पूरी तरह पढ़ा जा सकता है। इन कविताओं का अनुवाद मैंने अरविंद जायसवाल के साथ मिलकर किया है, जिसके निरीक्षण में नुसरत मोहिउद्दीन, डॉक्टर के एल व्यास, सी जयशंकर बाबू, डॉक्टर श्यामलाल देवी और चिंतला प्रसाद ने साथ दिया है। बरबर के पुराने साथी का एम टी खान ने हमने जेल की यादें ली हैं। इस तरह साहसगाथा की पृष्ठभूमि तैयार हुई और अब साहसगाथा पुस्तक रूप में स्वयं आपके हाथ में है। इसके अनुवाद को स्वयं मूल कवि ने पंक्ति दर पंक्ति देखकर स्वीकृत किया है। आंध्र प्रदेश में नक्सलवादी संघर्ष के इस प्रवक्ता कवि के अनेक कविता संग्रहों पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। देश के भीतर जन संघर्षों में सीधे भागीदारी की बात बरबर में देखी जा सकती है। ऐसे संघर्षरत लेखक की आज हमने अपने देश में अन्यत्र मिसाल दुर्लभ है। बरबर राव उन रचनाकारों में है जिनसे देश की जनता पहचान के संकट समय में मार्गदर्शन प्राप्त करती है। संपूर्ण देश में उनकी ख्याति का कारण यही है कि अभिव्यक्ति के खतरे उठाकर जेलों में रहते हुए इस रचनाकार कार्यकर्ता ने व्यवस्था को सदैव शोषित जनता की ओर से सावधान किया है। बरबर की कलम की ताकत की पहचान कर ही आंध्र प्रदेश में बनी गिरी विभिन्न सरकारों द्वारा उन्हें अनेक अंतरालों तक जेल में बंद रखा गया। मौजूदा सरकार का रवैया भी सिद्ध करता है कि आज की उसकी पैनी निगाहें उनकी जन संघर्षों में सक्रिय भागीदारी, विशेषकर नक्सलवादी संगठन पीपुल्स वार और MCCI के लिए नए सम्मिलित स्वरूप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी गतिविधियों पर लगी हुई है। ऐसे जनकवि को आजीवन पुलिस की कड़ी निगाहों में रखना पड़ा है। यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही है। लोकतंत्र की कठपुतली बनाए जाने वालों के खिलाफ बोलने वाले इस रचनाकार को आज व्यवस्था से जूझना पड़ रहा है। सांप्रदायिकता, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण और विश्व बैंक की गुलामी के विरुद्ध जन का ध्यान वामपंथियों के लोकतांत्रिक संघर्ष और नक्सलवाद की सशस्त्र क्रांति ने पुनः खींचा है। यही कारण है कि आर्थिक तथा सामाजिक असमानता के चलते गांव में नक्सलवाद का प्रभाव आंध्र में देखा जा सकता है। बरबर राव इसी संघर्ष के प्रवक्ता कवि है। इनका जन्म 3 नवंबर 1940 को हुआ। पिता कोदंड रामाराव कुमास्ता का काम करते थे और माँ रुक्मणी घरेलू कार्य में ही अपना सारा ध्यान लगाए रखती। का हेमलता से बरबर राव का विवाह हुआ। इनकी 3 लड़कियां हैं। हेमलता बरबर के संघर्षों में इतने समर्पित रही हैं कि जब बरबर जेल में रहे उनके सारे कार्यों का संचालन स्वयं करती रही। इन पर भी अनेक केस चले हैं। बचपन में बरबर ने घोर गरीबी का सामना किया, छात्रवृत्तियों के आधार पर पढ़ाई की। हनमकोंडा कॉलेज से BA और उस्मानिया विश्वविद्यालय से MA करने के बाद साहित्य में लोक संस्कृति तथा काकतिया विश्वविद्यालय में तेलंगाना मुक्ति संग्राम पर शोध की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही मार्क्सवाद की ओर खींचे रहे बरबर राव जब छात्र थे उनके पास मद्रास जाने के लिए रेल टिकट के पैसे तक नहीं थे। किसी तरह पैसे इकट्ठा कर अपने साथियों के साथ उन्होंने अपने युग के 2 बड़े साम्यवादी तेलुगु लेखकों चलम और शीर्षी से मद्रास जाकर मुलाकात की और लौटे वक्त मरीना बीच से समुद्र को देखा। समुद्र से बचपन से ही लगाव होने के कारण शायद एक लंबी कविता समुद्रमु शीर्षक से लिखी है। यद्यपि इस रचना को जून 1981 में इन्होंने लिखना प्रारंभ किया और 82 नवंबर को यह रचना समाप्त हुई। इसे अनुदित कर पाठकों के लिए पुस्तक में उपलब्ध करवाया गया है। पाठक इसे भरपूर समझ सकेंगे। अपनी कविता में पूर्व लगाव के कारणवश और युगीन बोध के अंतर्गत बरबर ने माँ की तरह जन्म देने वाली श्री श्री की कविता पंक्ति लिखकर श्री श्री के स्मरण में रखा है। कालांतर में श्री श्री की अध्यक्षता में श्री काकुलम की भूमिहीन आदिवासियों के हित में छिड़ी सशस्त्र नक्सलवाद की लड़ाई को जब लेखकों ने खुला समर्थन दिया, विप्लव रचयितलु संगम की स्थापना 4 जुलाई 1970 को यहाँ हुई थी। यह सफर लंबा रहा और कई उतार चढ़ाव से गुजरा है। प्रतिबद्धता तो नक्सलवाद की विभिन्न लेखकों की रही, किंतु सहभागिता के सवाल पर बहुत से लेखक संघ छोड़ गए, किंतु बरबर ने उसे बिखरने नहीं दिया और आज भी वे वीरंस के कार्यवाहक हैं। 1966 नवंबर में सृजना पत्रिका इन्होंने निकाली थी। इस पत्रिका में वीरंस के गठन के बाद नक्सली लेखकों की रचनाएं भी छपती थीं। शिव शाकर जैसे सक्रिय कवि, साधना जैसे उपन्यासकार छपते थे। तत्कालीन सरकार के इशारे पर जब वरवर राव को वरंगल कॉलेज से निष्कासित किया गया, इसके विरुद्ध उनके चहेते हजारों छात्रों ने आंदोलन छेड़ा था। तेलंगाना के छात्रों पर भी इनकी कविता का प्रत्यक्ष प्रभाव अनुभव किया जा सकता है। बरसों पहले सिकंदराबाद षड्यंत्र केस में जब अन्य साथियों के साथ बरवर राव को जेल भेजा गया, उन दिनों को याद करते हुए बरवर के साथी क्रांतिकारी लेखक M.T. खान कहते हैं कि बरवर मशीराबाद जेल में अध्ययन में डूबे रहते थे। वे लेखक और उसके सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में सोचते रहते थे। जेल में रहते हुए उन्होंने नक्सली भुमैया और किष्टा गोंड को सुनाई गई फांसी की सजा के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। फिर आपातकाल में मीसा के तहत 2.5 वर्षों तक बरवर हैदराबाद की चंचल गुंडा जेल में बंद रहे। नकली मुठभेड़ में पुलिस द्वारा मार गिराए गए सैकड़ों नक्सलियों के केसों को वह प्रकाश में लाए। बरवर राव पर लगभग 30 केस यहाँ की विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाए गए। लगभग सभी में विभिन्न न्यायालयों द्वारा वे ससम्मान बरी हुए। वे तिबारा की जेल भी गए। उनकी जेल में लिखी कविताओं का संग्रह भविष्यत चित्र पटमों पर सरकारी पाबंदी थी। साहसगाथा में यह सारी कविताएं दे दी गई हैं। हाल ही में आंध्र की सरकार और नक्सलवादी नेताओं के मध्य शांति वार्ता का पहला दौर समाप्त हो चुका है। इसमें नक्सली नेता रामकृष्ण और अमर आदि भाग ले चुके हैं। वार्ता के मध्यस्थता करने वालों में बरवर राव प्रमुख प्रतिनिधि रहे। वे पीपुल्स वार द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि थे। वर्षों बाद विभिन्न शहरों और गांवों में हुई जनसभाओं में बरवर आदि क्रांतिकारी साथियों को सुनने के लिए लाखों की संख्या में जनता उमड़ पड़ी थी। इस अवसर पर बरवर ने अनेक नक्सली शहीदों के स्मारकों का अनावरण भी किया। अखिल भारतीय क्रांतिकारी संघ की सांस्कृतिक संघ की स्थापना में बरवर का विशिष्ट योगदान रहा है। का कंचन कुमार के साथ मिलकर वे आमुख का संपादन करते रहे। अब हमारे प्रांत में साम्राज्यवादी दृष्टिकोण की हिमायती चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी। बरवर का जीवन खतरे से खाली नहीं था। जब तब उनकी कविताओं के साथ सूचना मिलती थी कि वे सकुशल हैं। ऐसे संपर्कहीन समय में का ज्ञान रंजन ने मुझे यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि मैं किसी तरह बरवर से संपर्क करूं और उन्हें पहल के समर्थ व्याख्यान के लिए दिल्ली भेजूं। किसी तरह संपर्क साध कर मैंने यह काम किया। उस दौरान बरवर लेखक और उनकी जनसंघर्षों में भागीदारी के बारे में अधिक सोच रहे थे। बरवर द्वारा हमें दिया गया उनका आत्मवक्तव्य साहस गाथा में यहाँ दिया जा रहा है ताकि पाठक उनके संपूर्ण विचारों से परिचित हो सके। हाल ही में नामवर सिंह हैदराबाद आए थे और प्रगतिशील लेखकों द्वारा उन्होंने संयुक्त मोर्चा खोला। हमने अमेरिकी साम्राज्यवाद, इराक पर अमेरिकी आक्रमण और देश में फैली साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध जुलूस निकाला था। उसका नेतृत्व राज बहादुर गौर, नामवर सिंह, SV वरवर राव, गदर और शमीम फैजी जैसे आदि लोगों कर रहे थे। इसी जुलूस में मुझसे और नुसरत से नामवर सिंह ने कहा था कि अब हिंदी में बरवर की कविताएं आ जानी चाहिए। आज यह काम मुकम्मल हुआ जाता है। वाणी प्रकाशन के प्रमुख अरुण माहेश्वरी विशेष तौर पर हैदराबाद आकर हमारे बुलावे पर बरवर से मिलने नहीं आते तो भला कैसे साहसगाथा आप तक पहुंचती। आज बरवर की हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, यह क्या कम है। शशि निराट स्वाधीन, नुसरत मोहिउद्दीन।